ऐसी ये बंधनी है। इन लोगों की गोपियों की क्यों भगवान के प्रति विकास नहीं था, जो कि गोविंद विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सबके जीवों के आत्मा के लिए आत्मा है और उनको अपना रूप प्रेम अपना जैसा मानकर उनके प्रति प्रेम करती है। ये अब इसको उद्धव जी कहते हैं कि हमारे मुख से ही श्रवण करो, ये कहती हैं, ये परम वंदनीय है जगत के उद्धव जी और वो गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हे उद्धव, तुम हमारे भृत्य हो, हमारे सेवक हो, तुम हमारे सुहित हो। सुहित माने क्या? अत्यंत हमारा सुंदर हृदय हो, हमारे बहुत प्यारे हो एवं सखा स्वरूप भी हो। ये कहा है कृष्ण ने, ऐसे उद्धव जी गोपियों के की यहाँ पर स्तुति और वंदना कर रहे हैं।
मैं फिर कहा है
संग में विश्व सुहित सखा और फिर बदलाया है श्रीमद भागवत के सारे से संघ में स्वं तू भागवतो भागवते स्वं। जितने भागवत हैं उन भागवतों में भी तुम परम भागवत, मैं वही हूं, मैं तुम ही हो, भागवत के रूप में मैं ही तुम उद्धव। इसलिए उद्धव जी को अपना स्वरूप बतलाया है। और भी एक जगह कहते हैं तुम हमसे कम नहीं हो, तुम हमारे बराबर ही हो। किस विषय में? रूप में, कुछ गुणों में भी और सब विषयों में तुम हमारे बराबर ही। और अंत में ये कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मज्योति न शंकर न तो संकर्षणों न स्त्री नई आत्मा तथात्मा। कि तुम हमारे अत्यंत प्रिय हो, क्यों? भक्ति के कारण, भक्त तुम हमारे, इसलिए तुम हमारे अत्यंत प्रिय। हमारे ब्रह्मा जी हमारे पुत्र हैं, नाभि कमल से निकले हुए आत्मज्योनी हैं, हमारे उतने प्रिय हैं। क्यों? उनमें पुत्रत्व का अभिमान अधिक और भक्तत्व का अभिमान कम। और शंकर भगवान के एकात्मा के अमेरे स्वरूप है, स्वरूप होने के वजह से उनमें स्वरूप का भाव अधिक है, भक्ति का भाव कम है इसलिए। और शंकर सन घाटा है, घाटा का भाव अधिक और प्रेम का भाव कम इसलिए। और लक्ष्मी जी उनकी प्रिया, प्रिया का भाव अधिक और प्रेम का भाव कम इसलिए। इन लोगों को कहा इनसे भी अधिक आप हमारे प्रिय हैं, क्योंकि आप हमारे भविष्य। यहाँ तक कि अपने शरीर को भी, आत्मा माने यहाँ पर उनका शरीर, शरीर को भी बताया, ये शरीर भी हमारा जितना प्यारा है उससे भी अधिक आप हमारे प्यारे हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मा भक्त होने पर भी अथवा और चारों के लिए उनमें वही भाव अधिक था, इसी को कल हमने समझाया। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों ने तपस्या की, कठोर तपस्या की। कहा गया कि वर मांगो, तो एक ने वर मांगा कि आप हमारे पुत्र हो और दूसरे ने कहा कि आपके प्रति मुझे प्रेम हो, वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में प्रेम है, पुत्र हुआ और प्रीति नहीं रही, इसलिए पुत्र होने के साथ साथ प्रीति होनी चाहिए, इसलिए नंद बाबा जी कृष्ण के अधिक प्यारे हैं, उन्होंने उनको अधिक प्रेम किया और इनमें पुत्र का भाव था किंतु भगवान ही पुत्र हुए हैं इसलिए ऐश्वर्य भाव था, ये कभी कभी उनको भगवान मान करके हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। और उनमें वात्सल्य भाव होने के कारण ये सब स्तौ स्तुति नहीं करते थे, जितना भी मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखाए अथवा गोवर्धन को उठा ले, पुतना को मार दें, अघासुर को मार दें, उसके मुख में जाकर के फिर निकल आए, उसको मुक्ति भी दे दें, तभी इन लोगों को ऐश्वर्य भाव नहीं होता। इसी कारण इसलिए यहाँ पर ये बतला रहे हैं ऐसे जो उद्धव हैं भगवान का चरित्र दिए हैं। इसलिए उद्धव जी यहाँ पर गोपियों के संबंध में बतला रहे हैं एता परम तनुभितो गोपपति, गोपियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करें देखो गोविंद कौन, कृष्ण नंदनंदन, नंदनंदन के प्रति और नंदनंदन के लिए ही भक्ति हो ऐसी गोपियों का है। ये मनुष्य जितने देहधारी हैं उन लोगों में गोपियों का ही मनुष्य धारण देह करना उनका सफल जन्म है, अतः तो उनका जन्म इसीलिए सफल है कि गोविंद में उनकी रूढ़ उनका रूप है। जो गोविंद सबके अंतर्यामी हैं, अपने प्राणियों के सब में निवास करते हैं और उनके प्रति रूढ़ होना बड़ा कठिन है, नारायण के प्रति नहीं होगा क्योंकि उनमें ऐश्वर्य भाव है। रूढ़ भाव माने क्या, मधुर रूप में उनके प्रति प्रेम, उपाधि युक्त प्रेम नहीं। रूढ़ भाव कब होगा, जब हमारे ये बराबर के हैं अपने हैं ये भाव आएगा, और यदि उसमें भ्रम रहा कुछ संभ्रम भाव गौरव भाव रूढ़ भाव नहीं होगा। इसलिए देवकी वसुदेव का रूढ़ भाव नहीं आएगा, सत्यभामा रुक्मणी का भी नहीं आएगा, केवल मात्र गोपी हो पाएगा। कृष्ण गोप हैं हम लोग, हम उनके गांव भर की रहने वाली, हमारे लोग प्रियतम हैं, इसलिए इनके प्रति जो सबके अंतर्यामी हैं सबके प्राण स्वरूप हैं उन गोविंद के प्रति इनका रूढ़ भाव है। मूल में भूमि शब्द के द्वारा पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी कहीं मत समझो, ये भू शब्द के द्वारा स्वर्ग ऊपर में वैकुंठ
सप्तलोक
और एकदम वृंदावन गोलोक वृंदावन सबको ले लिया गया। ये क्योंकि प्रकट रूप में तो ये पृथ्वी मान लो उन्हीं को ब्रजभूमि वही आती है, इसलिए जितने भी भूमि का कार्यकर्ता पर ये होगा तीन लोग, तीन लोग माने यह लोग सब में गोपियों का ही शरीर धारण करना उनका सफल है। हम लोग का सफल हो सकता है यदि भक्ति हो और कृष्ण के ऐसे दर्शन मिले और ऐसे भाव यदि हमारे हो। और एक अर्थ बतला रहे हैं और बतला रहे हैं यदि तनुभूतो भूमि लगाए एक साथ में तो पृथ्वी के जितने भी क्षुद्र क्षुद्र देवधारी जीव हैं नीच योनि के भी उन सब जीवों को भी जीवों को भी संसार से उद्धार कर और वह प्रेम जो उनके हृदय में था गोपियों को उस प्रेम के जगत के जीवों का पालन पोषण सबको करती है। उस दिन गोपी शब्द का अर्थ हमने बताया गोपी माने क्या? जिस गोपियों की शक्ति से कृष्ण चंद्र जगत में पालन करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रेम का आस्वादन करते हैं, विस्तार करते हैं और दूसरों को आस्वादन कराते हैं,
उसी शक्ति का नाम गोपी।
उस शक्ति का नाम गोपी है। ये गोपियां हैं, ये गोपियां पालन पोषण करती हैं। आज यदि गोपियां नहीं होती तो हम लोग जो सुन रहे हैं ये नई चीजें नहीं है, गोपियों का भाव भी नहीं है। अब गोपियां हैं कहां? गोपी है कि नहीं है? यदि कृष्ण है तो गोपियां भी हैं। कृष्ण यदि हमारे यहां पर अभी अंतर्यामी है तो वो गोपियां भी उनके साथ हैं, उनको छोड़ करके नहीं रहते। इसलिए समझे जो गोपियां ही ये प्रेम प्रदान करने में प्रधान कारण है। जगत के नीच से नीच लोगों को भी वो प्रेम देकर के पालन पोषण करती हैं। गोपियां ही इसका प्रचार करती हैं। यदि हम लोग कुछ बोलते हैं तो उन्हीं की शक्ति से। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, हमारे सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया है कि आप लोगों का चरित्र आप ही लोगों की कृपा से, आपके शक्ति के द्वारा ही हम कुछ वर्णन कर सकते, अन्यथा कोई उनके श्लोकों का कोई अर्थ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं ये गोपियां जगत का पालन पोषण करती हैं। केवल यही नहीं, अपने कारुण्य के प्रभाव से पृथ्वी के दुर्गत जनों के परम हितकारी ये गोपियां हैं, हित करने वाली। जैसे हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हम जैसे ये कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंह, और उसके बाद में श्लोक क्या, सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुते देवी प्रणमामि इत्यादि, उनकी भी वंदना करते हैं, गोपियों की भी वंदना करते हैं, भक्तों की वंदना करते हैं, वैष्णव की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। ये एक तत्व है, इसलिए वो लोग अभी भी हमारा पालन पोषण वही करते हैं, हमारी रक्षा भी वही करते हैं सब। तो इसलिए जगत के हितकारी हैं। इसलिए उद्धव जी उनका वर्णन कर रहे हैं, भू इस जगत में ये गोपियां ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्हीं का जीवन लेना, जीवन धारण करना सार्थक है। अखिलात्मा जो परमेश्वर है, गोविंद है, गोकुलेंद्र के रूप में विख्यात जो नंदनंदन है, उनमें रूढ़ भाव, रूढ़ भाव माने सर्वनिरपेक्ष जार भाव, रूढ़ भाव माने एक शब्द में उन्होंने बताया। यदि हम कहें कि जिनको स्नेह हो गया वो रूढ़ भाव नहीं होगा, जिसको हम कहें मान लें कि अनुराग किसी को हुआ वो भी मुक्त अवस्था में, अभी रूढ़ भाव में, अनुराग तक भी रूढ़ भाव में, महाभाव में उपस्थित होने पर जब वो और कुछ ऊपर जाने लगेगा उस समय में ये रूढ़ भाव स्वाभाविक निरपेक्ष सर्वनिरपेक्ष। सर्वनिरपेक्ष मैंने वेद परिषद इत्यादि सबका किसी के कंट्रोल का नहीं, इसे इसको बतलाया गया विशेष करके पार किए जार भाव। तथा अपूर्व परम विचित्र राग क्रीड़ा इत्यादि हमारे धैर्य को भी, कृष्ण के धैर्य को भी दूर कर देने वाली ये गोपियां होती हैं। संसार के भय को दूर करने वाली इन गोपियों का चरित्र, इनकी कृपा, संसार आने आती दूर हो जाता है। ऐसी गोपियों की चरणों की ये वंदना कर रहे हैं, जैसे गोपियों का ही जीवन एकमात्र सार्थक है। और उनका एक अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रति इनकी स्वाभाविक रूप में अत्यंत उत्तम, सबसे उच्च जो इनका प्रेम है, किसी को जो प्राप्त नहीं है उसको कहते हैं रूढ़। साधन द्वारा सिद्धि लाभ करने वाले को भी या और किसी को भी जो प्राप्त कभी नहीं हुआ उसको कहते हैं रूढ़, ऐसे प्रेम को। विशेष करके श्रीमती राधिका जी का जो रूढ़ भाव है वो किसी को किसी उनकी परिकर को भी नहीं जो है और की तो बात क्या, ललिता की शाखा में भी नहीं है। अब विशेष करके उन्हीं के लिए ये कहा गया इसलिए इसको रूढ़ कहा गया। अतएव वह प्रेम सामान्य नहीं है। जत भव भी हो जो भाव संसार से विरक्त हैं या संसार से जो छुटकारा पाने चाहने वाले हैं वो मुमुक्षु फिर मुनिगण जिनको मुक्ति हो गई है वो लोग आत्माराम अथवा जो गोविंद के साथ में रहने वाले उद्धव इत्यादि हैं भक्त लोग, जादो लोग हैं, अर्जुन हैं। हम लोग सुनते हैं कि पांचों पांडव द्रौपदी वहां पर राधा कुंड के किनारे में तपस्या कर और वृक्ष तो नहीं है लुप्त हो गए, मिला कि नहीं ये कौन कहेगा, ऐसा भी प्रमाण तो नहीं हो सकता है कि मिल ही जाए न भी मिले, किंतु गोपियों का वो ऐसा भाव मिलना मस्ती है वो नहीं हो सकता। अर्थात वैष्णव की कृपा से परम साधन और साध्य का फल है ऐसा है। हम लोग ऐसा केवल इच्छा करते हैं किंतु आज तक पा नहीं पाए। उद्धव जी घाट बनकर के वृंदावन में है, राधा कुंड के पास में कुसुम सरोवर अभी तक उसी रूप में है, पाए कि नहीं पाए आकांक्षा है तो बतलाओ। तो जो लोग इस जगत में उसके प्रति थोड़ा सा लोभ प्राप्त किए हुए हैं और वैसा साधन करना है तो कैसा कठोर साधन करना पड़ेगा, बहुत कठोर। किंतु कठोर होने पर भी बहुत सुखमय साधन है। भगवान का कीर्तन करते हुए रसी भी कथाओं का श्रवण करते हुए बड़े प्रेम के साथ में इसको किया जा सकता है, किंतु किनके लिए यह सहज है। जैसे कोई एक दुष्चरित्र व्यक्ति है, पियक्कड़ है, खूब शराब पीता है, उसके लिए कहा जाए ये सबको छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम चाय तो सब छूट जाएगी, चाय नहीं छूटेगी, चाय को छोड़ो तब इसके बाद में भगवान का भजन करो, उनके लिए तो बड़ा कठिन है। किंतु जिन्होंने जन्म से ही नहीं लिया है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सहज नहीं है। इसलिए किसी के लिए कठोर है बहुत कठिन है और किसी के लिए अत्यंत सुखमय है। ये किनके लिए सुखमय है, जिनको लोभ हो गया है, वैष्णव का संग प्राप्त हो गया है, भगवान की कृपा से उनको संग मिलता जा रहा है, उनके लिए परम सुखमय आनंद के साथ में ये भक्ति मिल जाएगी। और दूसरों के लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन होना ही जरूर आज भी तक रहे, अभी बहुत चर्चा बाकी है दूसरे दिन।
Thank you.
सही बात की, सही बात की, मान सुनाई
गोपियों का ही इस पृथ्वी में जन्म लेना सार्थक है, अथवा पृथ्वी में जन्म लेने वाले मनुष्य, जन्म लेने वाले विशेष करके या जितने भी जन्म लेने वाले पृथ्वी में, उन सब ने गोपवधुओं का ही मनुष्य जन्म लेना, मनुष्य के रूप में जन्म लेना सार्थक है। जिनकी गोविंद जो समस्त जीवों के अखिल आत्माओं के भी आत्मा है, उनके प्रति रूढ़ भाव है। रूढ़ माने आरूढ़ भाव, मैंने क्या सब उपाधि विवर्जित,
उपाधि
और देव इत्यादियों से भी निरंकुश, उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम है, भाव जिसको मुमुक्षु लोग, जो मुक्त हो गए हैं वो मुनि लोग, और हम भी वयं च, हम भी इसकी वांछा करते हैं किंतु हम लोग पा नहीं पाते हैं। फिर यदि हम लोग पा नहीं सके तो कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्त, तो ब्रह्मा जी का ही जन्म लेने से क्या लाभ, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के नाभि कमल से निकले हुए हैं और सबको बरसाता है, ऐसे ब्रह्म जन्म से ही लाभ क्या है। यदि अनंत कथा रसस्य, भगवान अनंत देव अर्थात कृष्ण की कथा में जिनको रस नहीं है, ये कुछ ऐसा अर्थ जो है ये कुछ आप्रासंगिक अर्थ सा लगता है, आप्रासंगिक अभी जो अर्थ बतलाया, क्यों आप्रासंगिक लगता है। कह रहे हैं गोपियों का ही जन्म सार्थक है, उनका जन्म लेना सार्थक है। अब फलश्रुति में कहते हैं कि वो ब्रह्मा का ही जन्म क्या है यदि अनंत की कथा में उनको रस नहीं, तो यह प्रसंगिक नहीं हुआ। गोपियों की बात कहता क्या और कृष्ण की बात यहाँ कह दी, नहीं समझ में आया ना, अप्रसंगिक जैसी, किंतु अप्रसंगिक नहीं है ठीक ही, क्यों कि उन्होंने कहा है गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भाव, गोविंद के प्रति उनका रूढ़ भाव। अब यहाँ पर अनंत की जो कथा कह रहे हैं उसमें जिनको रस नहीं है, अर्थात तो उन गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम इत्यादि है, भाव है, रूढ़ भाव है, उसके प्रति जिनको रस रुचि नहीं है, उनका जीवन बेकार का है। उस ब्रह्म जीवन से ही ब्रह्मा का जीवन ही पाकर के क्या लगा, अथवा ब्राह्मणों का जन्म लाभ करके उसमें वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ते हैं और यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों के जो गुण उनमें हैं वो रहते हुए भी, ऐसे कोटि कोटि ब्राह्मणों का जन्म का ही लाभ क्या है, और ब्रह्मा का ही जन्म की क्या जरूरत है यदि उस ब्रह्मा को भी उस कथाओं में रुचि नहीं है, ये बतला रहे हैं। कह रहे हैं यदि भगवान अनंत देव की कथाओं में, इन गोपियों संबंधी लीला कथाओं में यदि रुचि है कभी ब्रह्मा या ब्राह्मण जन्म की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि रुचि नहीं है तो फिर ब्रह्मा का जन्म लाभ करके या ब्राह्मण का जन्म क्या होगा। आराधितो यदि हरि तपसा तथा नाराधितो यदि हरि तपसा तथा अंतर बहिर् यदि हरि तपसा तथा नांतर बहिर् यदि हरि तपसा तथा। सबकी क्या जरूरत है, यदि भगवान के प्रति आराधना नहीं हुई तो तपस्या का कोई फल नहीं, और यदि भगवान की आराधना हो गई तो सब बेकार का करने की क्या जरूरत। अंतर और बाहर में यदि हरि हैं तो सब करने की कोई जरूरत नहीं, और यदि भगवान के प्रति यदि भीतर में यदि भगवान के प्रति अनुराग नहीं है तो उसका तपस्या करने से लाभ क्या हो, किसी स्थिति में उससे लाभ। उसी तरह से यहाँ पर कहा भगवान अनंत के प्रति गोपियों की जो प्रेम की बातें हैं, रूढ़ भाव की बात है, उसको सुनने में, उसको चिंतन करने में, उसके कीर्तन करने में यदि किसी को रुचि रस नहीं है, और रस तो बहुत ऊपर की बात है, यदि रुचि नहीं है तो उनका ब्राह्मण जन्म इत्यादि ब्रह्मा का जन्म बेकार है। और यदि रुचि नहीं है, रुचि है तो उसमें क्या होगा, कोई जरूरत नहीं। ये इनका कहने का तत्व। अनंत के लिए वो लगा है गोविंद तो पहले है ही है, और अनंत मैंने बलदेव जी, कृष्ण और बलदेव की कथाओं में जिनको रखने ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। करेंगे क्यों, क्यों ऐसा, उसके लिए कह रहे हैं। इन गोपियों के भाव के अनुरूप नहीं है, पहली बात तो ये ना। इसी कारण से मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण ने ग्रहण ली, ये ब्राह्मण के भाव से। ब्राह्मण भाव रहने से कृष्ण अपनी लीला में ग्रहण नहीं करेंगे, गोपी भाव तो बहुत दूसरी बात, अधिक से अधिक उसको तो ग्रहण कर सकते हैं जो ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण का अभिमान छोड़ करके एकदम मिलजुल करके ग्वाला जैसा मधुमंगल हो गया। मधुमंगल कैसा हो गया है, जाति खाती का भेद छोड़ करके कृष्ण का जूठा खाता है, खिलाता है, अब उसका ब्राह्मण तो क्या रह गया, और जो तपस्या प्रत नहीं करता क्या करता है, कृष्ण के साथ में गौवा चराता है, ही करता रहता है, और उसका कोई काम नहीं, ब्राह्मणत्व का कोई जरूरत नहीं। न जब ये सब जाता है घर से उसको खाने के लिए तो वो मंत्र पढ़ करके भोग दे करके खाता है, न क्या करता है। कृष्ण जैसे खा करके हाथ पूछ लेते हैं गमछे में या कपड़े में पटांबर में, ऐसे ही भी पूछ लेता है, ऐसे ही जैसे कृष्ण करते हैं वैसे ही करता है। कृष्ण के साथ साथ में गोपियों का अर्चन पूजन कराने के लिए जाता है, फिर मैंने एकदम ग्वाला हो गया, ब्राह्मण का कोई स्वभाव नहीं, इसलिए उनको तो ब्राह्मण मत कहो। कृष्ण लीला में ब्राह्मण की जरूरत कहाँ है, कहाँ है, तो वो केवल मधुमंगल और दूसरा कोई कर नहीं सकता, वो क्या मंत्र पढ़ें। इसलिए ये ब्राह्मणों का योग तपस्या व्रत कठिन वैराग्य और पुरुष अभिमान ये भाव उपयोगी नहीं, इसलिए ब्राह्मणों का जन्म लेकर के क्या होगा, भाव का प्रतिदेश ही है। इसलिए ऐसा कोई चीज जो कि इस भाव का प्रतियोगी है, विरोधी है, उसको नहीं जाना। इसलिए द्वारका का ध्यान, सत्यभामा रुक्मिणी का ध्यान, चिंतन, सेवन, कृष्ण के द्वारका रूप का ध्यान, द्वारका धीश है उनका ध्यान, ये ब्रज के इस भाव के लिए, विशेष गोपी भाव के लिए विरोधी है, इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों का जन्म लेकर के क्या होगा, उसमें तो ब्रह्म भाव की भाव रहेगी, अपरज का भाव रहेगा नहीं, उसमें त्याग वैराग्य होगा। ब्रजलीला में त्याग वैराग्य की क्या जरूरत है, इस सब की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये इसका विरोध है। ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा इसमें अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अब ब्राह्मण का अभिमान और पितामह का अभिमान ये उपयोगी है, ये भी उपयोगी, इसलिए ब्रह्मा जी इसके कार्य के प्रति वितराग होकर के छोड़ना चाहते हैं। ये कृष्ण का मैं कोई भी प्रतिविधान नहीं करता, यदि कृष्ण के साथ में मिले भी हैं तो जहां गोपियां नहीं है उस लीला में मिले, सखाओं को और कृष्ण को उस विरक्ति का भाजन भी वो खुद हुए हैं, उनके लीला में कुछ बाधा भी पहुंचाई, इसलिए ये स्टेज जुटे हैं।